नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में करेंगे ध्वजारोहण। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को बिहार में SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना, वैशाली, बेगूसराय और मुंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति की समीक्षा की। राहत और बचाव कार्य तेज करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और फिर अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस दिन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ों और कष्टों को याद किया जाता है।
इस दिन राष्ट्र उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेले गए दर्द की याद दिलाता है। श्री मोदी ने कहा कि ये दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। देश के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2021 में सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान के उपलक्ष्य में मनाने का निर्णय लिया था। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभाजन की विभीषिका में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश विभाजन के दर्द को कभी नहीं भूलेगा। इधर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। देश कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत है। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाया जाएगा। निमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटर मार्क भी अंकित है। लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें स्पेशल ओलंपिक 2025 का भारतीय दल, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेता और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता शामिल हैं। नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह की शाम पहली बार देश भर में कई बैंड प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। परेड में बिहार पुलिस, CRPF, ITBP, PMP, होमगार्ड, NCC और भारत स्काउट्स एंड गाइड के जवान भाग लेंगे। साथ ही 20 झांकियां निकाली जाएंगी। समारोह को देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। CCTV कैमरे से गांधी मैदान और आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 15 पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 7 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 2 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 6 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।
घर घर तिरंगा, हर घर
समस्तीपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज देश तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।
भारत में कोई तुष्टिकरण करना चाहेगा जो भारत की एकता अखंडता को अगर खतरा पैदा करना चाहेगा, यहाँ धर्म के आधार पर तुष्टिकरण के साथ अगर यहाँ अपना फैलाव चाहेगा, अपने परिवार के लिए सत्ता चाहेगा, तो अब यह देश उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। देश और बिहार की जनता आपको सबक सिखा दी है, आगे भी सबक सिखाएगा।
बेतिया में आयोजित तिरंगा यात्रा में सांसद संजय जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। पटना, गया, बक्सर, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, सुपौल और शिवहर समेत अन्य जिलों में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया।
घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि जिस कारण से नाम हटाए गए हैं उसका भी उल्लेख किया जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बागजी की पीठ ने कहा कि सूची को जिला स्तर पर जारी किया जाए और सबके नाम के आगे हटाने का कारण बताया जाए। इस सूची को प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यालय पर भी लगाने को कहा गया है। इसके अलावा न्यायालय ने इस संबंध में समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से भी लोगों के बीच सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग मंगलवार तक यह बताए कि SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए वह क्या कदम उठा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दावे और आपत्तियों की अवधि के 14 दिन बीत जाने के बाद भी SIR के संबंध में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा एक भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि प्रारूप सूची के संबंध में मतदाताओं से सीधे तौर पर 23,557 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। निर्वाचन आयोग ने वैशाली की सांसद वीणा सिंह से 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम रखने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही इसी मामले में सांसद के पति और विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने 16 अगस्त के शाम 5 बजे तक दोनों को अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना, वैशाली, बेगूसराय और मुंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति की समीक्षा की। श्री कुमार ने वैशाली जिले के राघोपुर दियारा, पटना के काला दियारा, रूपस महाजी, रामनगर, कसा दियारा तथा मोकामा, पाट और फतुहा के टाल क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच सूखा राशन, पशु चारा, पॉलीथीन शीट और दवा समेत अन्य जीवन रक्षक सामानों का वितरण सुनिश्चित करने को कहा। गंगा नदी के उफान पर रहने के चलते प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। 10 जिलों की 30 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद अभी भी कई स्थानों पर यह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक रिपोर्ट।
गंगा नदी के बढ़े जलस्तर के कारण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित फरक्का बराज के सभी 109 फाटक खोल दिए गए हैं। इसके बाद नदी के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि मुंगेर में अभी भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। पटना के दीघा घाट में नदी खतरे के निशान से नीचे आ चुकी है। गांधी घाट और हाथीदह में नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन अभी भी यह लाल निशान से ऊपर है। समाचार कक्ष से कल्पना झा।
भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 12 प्रखंड की 110 पंचायतें और शहरी क्षेत्र के 4 वार्ड बाढ़ की चपेट में हैं।
भागलपुर जिले के 12 प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। कहीं कमर तक तो कहीं छाती तक पानी का जमाव है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि शिविर में जगह कम होने के कारण काफी परेशानियां हो रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग रत जगा करने को विवश हैं। इधर किसानों की मेहनत बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया कि जिले के 253 गांव बाढ़ की चपेट में हैं।
मुंगेर जिले में हजारों बाढ़ पीड़ित घर छोड़कर NH-80 बबुआ घाट समारोह कार्यालय के आसपास और सरकार द्वारा बनाए गए आश्रय स्थलों पर शरण लिए हुए हैं। कहीं कहीं बाढ़ पीड़ितों को पॉलिथीन सीट के सहारे गुजर बसर करना पड़ रहा है। पेयजल और शौचालय की समस्या भी झेलनी पड़ रही है। किसान और पशुपालक पशु चारे की समस्या से जूझ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही है, जिस कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
कटिहार जिले में गंगा, कोसी, महानंदा, परंडी और कारी कोसी नदियों के उफान पर रहने के चलते बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा के साथ साथ बूढ़ी गंडक और कोसी नदी लगातार तबाही मचा रही है। खगड़िया सदर, परबत्ता और मानसी प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इधर पटना, वैशाली, बेगूसराय, सारण, भोजपुर और लखीसराय जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के अथमलगोला में रिकॉर्ड 226 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि आज बांका, भागलपुर और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान भागलपुर निवासी सेना के हवलदार अंकित कुमार शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर कल जिले के रंगरा प्रखंड के चापर गांव लाया जाएगा। यहां उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। पटना उच्च न्यायालय ने राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बरी कर दिया है। निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राजबल्लभ यादव पर नवादा में अपने आवास पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में करेंगे ध्वजारोहण। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को बिहार में SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना, वैशाली, बेगूसराय और मुंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति की समीक्षा की। राहत और बचाव कार्य तेज करने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।